ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। चीन के हांगचौ में एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। खेलों के 14वें दिन भारत ने 100 पदक पूरे कर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। इस सफलता पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सभी एथलीट को बधाई दी है। चीन के हांगचौ एशियाई खेलों में आज भारत ने अब तक 6 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य पदक सहित 12 पदक जीते। पुरुष क्रिकेट में भारत को स्वर्ण पदक मिला है। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। पुरुषों की कबड्डी के फाइनल में भारत ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। महिला कबड्डी में भी भारत ने चीनी ताइपे को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। बैडमिंटन में पुरुष डबल्स में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी की जोड़ी ने स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। तीरंदाजी में ज्योति सुरेखा वेनलम ने एशियाई खेलों का रिकॉर्ड बनाते हुए महिला कंपाउंड के फाइनल में दक्षिण कोरिया की सीसी को 149-145 के अंतर से पराजित कर स्वर्ण पदक जीता। पुरुष कंपाउंड के फाइनल मैच में ओजस देवतले ने स्वर्ण पदक और अभिषेक वर्मा ने रजत पदक जीता। आज का पहला पदक महिला कंपाउंड तीरंदाजी के सिंगल्स में अदिति ने कांस्य पदक के रूप में जीता। पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती के 86 किलोग्राम भार वर्ग में दीपक पुनिया को रजत पदक मिला। फाइनल में दीपक को 3 बार के विश्व चैंपियन हसन यजदानी से हार का सामना करना पड़ा था। भारत 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य सहित कुल 107 पदक जीतकर चौथे स्थान पर है और यह उसका अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किला से दिए गए भाषण में की गई घोषणाओं की समीक्षा के लिए आज नई दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक की। स्वतंत्रता दिवस के भाषण में श्री मोदी ने गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए आवास उपलब्ध कराने के लिए किफायती ऋण सुनिश्चित करने का जिक्र किया था। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में घरों के लिए सौर ऊर्जा सुनिश्चित करने का भी उल्लेख किया था। बैठक में इसकी तैयारियों की भी समीक्षा की गई थी। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज उत्तराखंड के नरेंद्र नगर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में 18 से अधिक एजेंडों के अलावा स्थानीय विषयों पर मंथन किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक में हिस्सा लिया। गृह मंत्री का आज देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान की 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस में भी शामिल होने का कार्यक्रम है। पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के तत्वावधान में किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 52वीं बैठक हुई। बैठक में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के अलावा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री भी शामिल हुए। बाद में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि बैठक में जीएसटी अपीलीय ट्रिब्यूनल के अलावा बाजरा तथा शीरे पर जीएसटी की दरों के बारे में भी फैसला लिया गया। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने आज मंगन जिले के नागा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। वे राहत शिविर भी गए जहां लगभग 200 लोग शरण लिए हुए हैं। इस दौरान प्रभावित लोगों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। इस बीच सिक्किम में भीषण बाढ़ से मरने वालों की संख्या 27 हो गई है और 141 लोग लापता हैं। मृतकों में थल सेना के कर्मी भी शामिल हैं। राज्य में 4 अक्टूबर को तीस्ता नदी में जलस्तर बढ़ने से आसपास के क्षेत्र जलमग्न हो गए थे। बाढ़ से 1100 से अधिक मकान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं। G20 की भारत की अध्यक्षता पर चर्चा के लिए विदेश मंत्रालय के संसदीय परामर्शदात्री समिति की आज नई दिल्ली में बैठक हुई। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि G20 के आयोजन में भारत की सफलता की सबने प्रशंसा की है। भारत ने मौजूदा स्थिति के मद्देनजर इसराइल में रह रहे अपने नागरिकों से सतर्क रहने और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने को कहा है। इसराइल में भारतीय दूतावास ने परामर्श जारी कर भारतीय नागरिकों से अनावश्यक आवाजाही से बचने तथा सुरक्षित स्थानों के पास रहने की सलाह दी है। इस बीच प्रधानमंत्री ने हमास लड़ाकों की ओर से आज गजा पट्टी से रॉकेट दाने जाने के बाद इसराइल ने युद्ध जैसी स्थिति की घोषणा की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।